ओम शांति, ओम शांति। दो दिनों से आप यहां शांतिवन में स्वनिरीक्षण तपस्या भक्ति कर रहे हैं और योग की गहराइयों का भी अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा से सर्व संबंध या एक बाप दूसरा ना कोई, ये अनुभूति भी आपको हो रही होगी, क्योंकि मधुबन में ये अनुभव करना हमारे लिए सहज है। वैसे भी योग का अर्थ ही है संबंध, लेकिन जब हम राजयोग कहते हैं तो राजयोग अर्थात सर्वश्रेष्ठ संबंध, सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला संबंध। ऐसे तो संसार में भी हम संबंधों में रहते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज में संबंध हैं ही। तो मनुष्यों के साथ जो हमारे संबंध हैं वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वो संबंध परिवर्तनशील हैं। व्यक्ति की मनस्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, तो वो व्यक्ति भी बदल जाता है। आज जो व्यक्ति हमें प्रेम करता है वो कल हमसे नफरत भी कर सकता है। जो व्यक्ति आज हमें सुख देता है वो कल हमें दुख भी दे सकता है। जो हमारा सम्मान करता है वो कभी हमारा अपमान भी कर सकता है। हम भी ऐसा ही करते हैं, अगर दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम भी किन्हीं अवसरों पर दूसरों के साथ इसी तरह से संबंध में आते हैं। लेकिन शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, बाबा तो सदा ही प्रेम का सागर है, वो तो सदा ही सुखदाता है, वो सदा ही शांति दाता है। इसीलिए कहा कि वो संबंध सर्वश्रेष्ठ संबंध है और हम भाग्यवान हैं, पद्मा पदम भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान जब धरती पर आते हैं तो हमें ऑफर करते हैं। क्योंकि इस विश्व के जो हमारे संसार के संबंध हैं, उन संबंधों में हम काफी दुखों का अनुभव कर चुके हैं, तो बाबा के संबंध में हम सदा सुख का अनुभव करें। तो हम सभी संबंधों में प्यार का अनुभव करते हैं। संबंधों में क्यों रहते हैं? क्योंकि प्यार मिलता है, सुख मिलता है, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमें प्राप्तियां होती हैं। तो यही अनुभव हमें शिव बाबा से भी होते हैं। शिव बाबा से हमें प्रेम मिलता है, बाप दादा से मिलता है, दूसरे शब्दों में कहेंगे जब हम ब्राह्मण जीवन में आए तब पहला अनुभव जो हमें होता है, जब ये ब्राह्मण जन्म लिया तो क्या अनुभव होता है? पहला ईश्वरीय प्यार का अनुभव होता है। दो चीजें अनुभव होती हैं, एक तो रूहानी प्यार और दूसरा शांति। हम आते हैं इन दो चीजों के लिए। ये लक्ष्य नहीं होता कि कोई मनुष्य से देवता बनेंगे या हमें कोई इतना पुरुषार्थ करना है, लेकिन जो प्यार, निस्वार्थ प्यार, निर्मल प्यार हम आज तक दुनिया में अनुभव नहीं कर रहे थे, जिससे हम वंचित थे, उस प्यार का अनुभव हम जैसे ही इस ब्राह्मण संसार में आते हैं दोनों तरह से अनुभव करते हैं, बाबा से भी अनुभव करते हैं और बाबा के बच्चों से भी। जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, प्रभु प्यार प्रभु परिवार है, उसे भी हम अनुभव करते हैं। तो हम समीप आते हैं, लेकिन कई बार हमें शिकायत होती है बाद में कि वो प्यार जो हमें अनुभव पहले होता था वो अब बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है। तो क्यों अनुभव नहीं होता है? क्योंकि शिव बाबा से प्यार पाने के लिए शिव बाबा के समान होना होता है, इस देह और देह के संबंधों से नियारा होकर के जब हम आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं। क्योंकि शिव बाबा तो सदा ही निराकार है ना, शिव बाबा तो सदा ही विदेही है, तो मेरी स्थिति भी जब विदेही है तब हमारी फ्रीक्वेंसी बाबा के साथ मैच करती है, तब बाबा के प्यार को हम रिसीव कर पाते हैं, हमारा मन उस स्तर पर होता है, तब हम उस प्यार का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को देह समझकर याद करते हैं, जो हम भक्ति में करते रहे तभी तो हम भगवान से समीप संबंध का अनुभव नहीं करते थे, लेकिन यहां बाबा ने हमें बताया कि न्यारा होकर के ही प्यारा हो सकते हो, जब न्यारा होंगे तभी उस प्यार का अनुभव हमें निरंतर होगा। तो हम कभी तो आत्माभिमानी होते हैं, कभी जब विस्मृत हो जाते हैं तो देह अभिमान में भी आ जाते हैं, हम कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हैं। फिर जो संबंधों में हमें सहयोग मिलता है वो बाबा से भी मदद का अनुभव हम करते हैं, जो सर्व संबंधों का अनुभव हम बाबा के साथ करते हैं वो मदद बाबा के हर बच्चे को अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि मदद हमें कब चाहिए होती है? जब हम मुश्किल में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, परिस्थितियों में होते हैं, तो हम अनुभव करते हैं। तो हम सबके अपने अपने अनुभव हैं, ऐसे हमारे जीवन के भी बहुत सारे अनुभव हैं, इतने अनुभव तो यहाँ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुभव जो पिछले साल हमें हुआ वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हम गए थे उड़ीसा में राउरकेला, वहाँ पे सेवा का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम करके हम लौट रहे थे, तो रांची एयरपोर्ट से हमें वापस आना था और फ्लाइट ऐसे थी कि रांची से कलकत्ता, फिर कलकत्ता से अहमदाबाद। तो हमने वो बोर्डिंग पास लिया, टाइम पर एयरपोर्ट पर थे और जो बोर्डिंग गेट बताया गया था उस पर जाकर हम बैठे थे, लेकिन वो फ्लाइट का बोर्डिंग गेट कब चेंज हो गया हमें पता नहीं चला और कोई अनाउंसमेंट भी हमें सुनने में नहीं आई, हो सकता है हुई भी होगी, हमारा ध्यान नहीं था तो हमने वो अनाउंसमेंट भी नहीं सुनी। तो हम फ्लाइट के टाइम तक वहां बैठे थे, तो बार बार देखते थे गेट की तरफ कि कोई बोर्डिंग नहीं हो रही, कोई फ्लाइट नहीं लगी, तो सोचा कि लेट हो गई होगी, फ्लाइट कभी लेट भी हो जाती है। तो मेरा बहुत कोई संकल्प नहीं था क्योंकि हम तो उसके अनुसार सही स्थान पर बैठे थे, लेकिन जब फ्लाइट छूटने का टाइम हुआ तो वहां से जब फ्लाइट की बुकिंग कराते हैं तो वो फोन नंबर लेते हैं, तो उनका फोन नंबर था, उनके पास हमारा नंबर था, उन्होंने फोन किया कि फ्लाइट जो है वो डिपार्ट होने वाली है, मैडम आप एयरपोर्ट पर अगर हैं तो आप तुरंत आ जाइए, नहीं तो बोर्डिंग गेट क्लोज हो जाएगा। तो एकदम मुझे आश्चर्य हुआ कि हम इतने समय से यहां बैठे हैं और ये अचानक तो हमने पूछा कि फ्लाइट कहाँ है, यहाँ तो कोई फ्लाइट नहीं है जहाँ हम गेट पर हैं। उसने कहा नहीं, बोर्डिंग गेट तो चेंज हो गया, आपको नहीं पता चला। मैंने कहा नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा तुरंत आ जाइए। हमने सामान उठाया तो जो बैग था, अब जल्दी जल्दी में ऐसा होता है कि कुछ छूट जाता है, तो जो बैग में बोर्डिंग पास था वो बैग ही छूट गया वहां उस गेट पर, और हम पहुंच गए उस गेट पर जहां से फ्लाइट छूटने थे। तो उसने तुरंत बोला लाओ बोर्डिंग पास और हम आपको निकाल देते हैं, बस एक मिनट ही है फ्लाइट छूटने में। अब जैसे ही मैंने देखा तो देखा बोर्डिंग पास ही नहीं है। अब बोर्डिंग पास नहीं है तो बोर्डिंग हो ही नहीं सकती। मैंने कहा हमारा बैग तो वहां छूट गया लगता है और मेरा बोर्डिंग पास उसी बैग में है, तो मैं एक मिनट में जाकर ले आती हूँ, इतना ही डिस्टेंस है। तो उन्होंने कहा नहीं इतना टाइम नहीं है, तो फिर आपकी फ्लाइट अब छूट गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे करके उसने हाथ खड़े कर दिए और फ्लाइट का गेट बंद हुआ और फ्लाइट रनवे पे चली गई। तो अब हमने भी सोच लिया कि ठीक है छूट गई। फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो टाइम से आकर बैठे थे यहाँ। अब आप जानो वो कलकत्ता की जो फ्लाइट थी वो 3 घंटे के बाद थी और उसके बाद अहमदाबाद आना था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब दूसरी फ्लाइट भी अगर करके जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचा देना टाइम से। ऐसे करके मैंने मन में बाबा से बात की, बाबा के ऊपर छोड़ा कि अब आप जानो क्या करना है, अब ये तो चली गई। तो वो जो क्रू मेंबर थी जिसने बोर्डिंग कराया, उसने हमको इशारा किया, हम जाने लगे तो उसने इशारा किया, उसने कहा रुको आप। तो हमने कहा कि अच्छा आप कोई बुकिंग करा सकते हैं हमारी। मैंने पूछने की कोशिश की कि कोई नेक्स्ट फ्लाइट, कोई विद इन 1 आवर कोई फ्लाइट हो, क्योंकि वहां से कलकत्ता सिर्फ आधा पौने घंटे का ही फ्लाइट था। तो उसने कहा कि हम देखते हैं क्या हो सकता है, आप अभी यहीं रहो और मेरे साथ आओ। उसने अपना सारा काउंटर क्लोज किया और हमें लेके गई अपने ऑफिस में, जो फ्लाइट का ऑफिस बुकिंग ऑफिस होता है वहां पर, और उसने कहा आप यहीं वेट करो, आपको कहीं जाना नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या आप कुछ प्रबंध करेंगे हमारे लिए या हम कुछ करें, तो उसने कहा आप रुको अभी हमें बताती हूँ। अब वो क्या कर रही थी वो मुझे नहीं मालूम, उसने हमें भी नहीं बताया। तो उसने ट्राई किया होगा अपने कुछ ऑफिसर्स को, मैनेजर्स को, जो भी उससे रिलेटेड हैं, और फिर 15-20 मिनट के बाद ही उसने बोला तुरंत मेरे साथ आओ। तो हम गए उसके साथ, उसने दोबारा हमसे सिक्योरिटी चेक कराया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। दोबारा सिक्योरिटी चेक कराया, लेकर के गई, और जब गेट से बाहर गए तो देखा कि जो फ्लाइट रनवे पे चली गई थी वही फ्लाइट वापस लौट करके हमारे लिए आ रही है। तो वंडरफुल था, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि जो फ्लाइट चली गई रनवे पर वो फिर से पलट करके आ जाए। कोई हम वीआईपी भी नहीं थे ऐसे उनके लिए कि कोई हमारे लिए उनको फ्लाइट लानी है। तो जस्ट बाबा के ऊपर छोड़ा कि बाबा आपको कैसे भी पहुंचाना है, आप जानो क्या करना है अभी, और देखो भगवान ने अपना काम कर दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, मैं जस्ट आपके साथ ये एक शेयर किया। तो हम कहां भी मुश्किल में होते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा को जैसे ही हम उस संबंध से याद करते हैं बाबा की मदद होती है हमारे लिए। लेकिन वो किसको निमित्त बनाता है, किसी के माध्यम से करता है, कई बार हम वो समझ नहीं पाते, क्योंकि शिव बाबा तो स्वयं निराकार है, वो तो आएगा नहीं, जरूर वो किसी को टच करेगा, किसी के द्वारा ही वो हमारा कार्य करेगा। तो बाबा के साथ हमारे माता पिता शिक्षक गुरु ये मुख्य संबंध है, और फिर उसके साथ साथ वो हमारा सखा साजन स्वामी साथी बंधु बच्चा भी है, फिर धर्मराज भी है। ये सब संबंध हम समय पर जब जिस संबंध की आवश्यकता है बाबा कहते हैं हमें अनुभव करना है। क्योंकि अगर सर्व संबंध बाबा के साथ अभी अनुभव नहीं किए तो फिर जो संबंध की कमी होगी उस संबंध में वो बुद्धि खींचेगी। इसीलिए एक से ही सर्व संबंधों का हमें अनुभव करना है। तो वो हमारा माता पिता है, भक्ति में हम कहते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लेकिन ज्ञान में हम वो अनुभव करते हैं। भक्त तो कहते रहे भगवान पालनहार है, भगवान ही सब कुछ हमें देता है, लेकिन वो कैसे हमारी पालना करते हैं, कैसे हमें योग्य बनाते हैं, कैसे हमें अपना वर्षा देते हैं, अपने सर्व खजानों का मालिक बनाते हैं, हम बालक सो मालिक हो जाते हैं बाबा के बच्चे, वो हम साक्षात संगम युग पर अनुभव करते हैं। बाबा बच्चों के लिए कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, कहते हैं कितनी बार मुरली में। जैसे आज के माँ बाप भी बच्चों के सर्वेंट ही होते हैं, फील करते हैं ना, जो माता पिता हैं उन्हें बच्चों की पालना कैसे करनी पड़ती है, बिल्कुल उनका सर्वेंट बनकर के ही करनी पड़ती है, बच्चे मालिक होके रहते हैं माँ बाप के ऊपर। ऐसे ही हम भी बाबा के मालिक बच्चे हैं और बाबा हमें मालिकम सलाम कहते हैं। हर रोज हमें बाबा की याद प्यार मिलती है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बाबा हमें कहते हैं। तो उस प्यार का अनुभव माता पिता के रूप में रोज अमृत वेले का जो समय होता है वो विशेष वो अनुभव का समय होता है, जब बाबा हमें अपने सर्व खजानों से भी भरपूर करते हैं, गुणों के खजानों से, शक्तियों के खजानों से, अपने वरदानों से। जो अमृत वेले का समय है वो बाबा के वरदानों का भी समय है। और माता पिता जैसे कहा कि बच्चों की सुरक्षा भी करते हैं, अगर बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं तो पूरा निश्चिंत होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, उनको पता है माँ बाप हैं संभाल लेंगे, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो समर्थ हैं। ऐसे ही शिव बाबा भी सर्वशक्तिवान हैं, सर्व समर्थ हैं, और जब हम उनके साथ अपने आप को अनुभव करते हैं तब हमें भी लगता है परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, हम निश्चिंत होते हैं। बेफिक्र बादशाह की जो स्थिति बाबा कहता है वो तब हमें अनुभव होती है। तो यहां भी एक कहानी आती है छोटी सी कि एक बार एक भक्त था भगवान का, तो वो अपने मतलब भगवान को सदा साथ रखता था, भक्ति में वो पूरी कोशिश करता था कि ईश्वर मेरा साथी है। तो एक दिन उसने सपना देखा और सपने में उसने क्या देखा कि वो समुद्र के किनारे टहल रहा है, लेकिन टहलते टहलते उसे पैरों के निशान दिखाई दिए। तो कहीं कहीं तो चार निशान थे और कहीं कहीं दो निशान थे। तो जहां उसे चार निशान दिखाई दिए वहां उसने महसूस किया कि भगवान उसके साथ चल रहे हैं, तो ये चार निशान हैं। और कहीं कहीं जो दो निशान थे वो उसने महसूस किया कि ये दो निशान शायद मेरे ही हैं। फिर उसने थोड़ा और अच्छी तरह देखा तो ये देखा कि जो चार निशान हैं वो उस समय हैं जब वो जीवन में बहुत खुश था, वो बहुत सुखी था, और जब दो निशान दिख रहे हैं वो समय है उसके जीवन का जब वो दुखी था, जब वो कष्टों में था। उसे हैरानी हुई कि मेरे सुख के दिनों में तो भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन जब मैं तकलीफ में हूं तब दो निशान, तो कहां गए भगवान, मैं तो हमेशा उनको अपने साथ रखता हूं। तो उसने शिकायत की कि भगवान मेरे तकलीफ के दिनों में ये दो निशान ही दिख रहे हैं, आप कहां थे उस समय। तो भगवान ने उसे जवाब दिया कि ये जो दो निशान दिख रहे हैं ये दो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, ये मेरे निशान हैं, क्योंकि जब तुम कष्ट में थे तब मैं तुम्हें चलने की भी तकलीफ नहीं देना चाहता था, और इसलिए मैंने तुम्हें गोदी में उठा लिया। तो जब मैंने तुम्हें गोदी में उठाया तो ये निशान मेरे निशान है। तो हम भी ऐसे अनुभव करते हैं कि बाबा कैसे, हम सभी बाबा के बच्चे इस कलियुगी दुनिया में हैं, तमो प्रधान दुनिया में हैं, विघन कदम कदम पर आते हैं जब ब्राह्मण जीवन में हम यात्रा करना शुरू करते हैं। पर कैसे पार होते हैं हमारे विघन, कैसे पार होते हैं? हिम्मत है, लगन है, बाबा में पूरा निश्चय है। तो जैसे मक्खन से बाल, बाबा कहता है जहां लगन है वहां विघन ठहर नहीं सकता। उस नशे में खुशी में कैसे हम पार हो जाते हैं, कौन हमें क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कोई हमारी ग्लानी करता है, कितना फर्क पड़ता है हमको? फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने क्या पा लिया है वो इनको नहीं मालूम है। हाँ, मन में जो गीत होता है, पाना था सो पा लिया, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के समय हम सुनते हैं, बाबा को भी दुनिया वाले लोग क्या कहते थे, कितने अपशब्द कहते थे बाबा को, लेकिन बाबा ने कभी उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि बाबा ने समझा कि अज्ञान है, समझ ही नहीं है इनको कि ये कौन कह रहा है, कौन कर रहा है, कौन साथी है। तो हम भी इतना सहज बाबा के प्यार में, उस निश्चय में, नशे में पार होते जाते हैं। वो माँ बाप का प्यार, माता पिता का प्यार हम मुश्किलों के समय अनुभव करते हैं। फिर बाबा हमारे शिक्षक हैं, वो परम शिक्षक है, सत्य शिक्षक है, और स्वयं भगवान हमारा शिक्षक है। तो कितना नशा और खुशी होना चाहिए। किसी का भी दुनिया में भी अगर कोई रिनाउन टीचर होता है, कोई प्रसिद्ध पढ़ाने वाले और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होते हैं, मानो कोई कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, ऐसी कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया में, अगर उनमें पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले भी, आने वाले भी ऐसे ही प्रोफेसर होते हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत गर्व होता है और बहुत उसका नशा भी होता है कि कहाँ पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, कितना ऊंची प्राप्ति हमें होने वाली है इससे। और हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है? वही जो भगवान ने खुद स्थापन की है, और पढ़ाने वाला टीचर भी खुद परमात्मा है। तो कितना नशा और खुशी हमें होना चाहिए, और कितना ऊंचा लक्ष्य भी है पढ़ाई का, जहां कोई यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं बना सकती, राजाओं का राजा नहीं बना सकती, हाँ देवता नहीं बना सकती, बना सकती इस दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी वो नहीं बना सकती, लेकिन पढ़ाने वाला तो एकदम एक्यूरेट है। बाबा तो रोज हमें पढ़ाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बाबा की मुरली ना चलती हो। होता है कभी, कहते हैं शिव बाबा कभी कोई बहाना नहीं देते कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा सिर दर्द है, आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने वाला टीचर बिल्कुल रेगुलर पंचुअल है हमारा, लेकिन पढ़ने वाले हम स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? हमारी पढ़ाई में हम रेगुलर और पंचुअल हों, क्योंकि जितना हम रेगुलर पंचुअल होते हैं पढ़ाई में, तभी हमारी धारणा होती है, हम कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते, ज्ञान के कोई राज को हम मिस नहीं करते। फिर पढ़ाई में केवल पंचुअल होने की बात नहीं, बाबा कहता है दो तरह की पढ़ाई होती है, एक होती है थ्योरी और एक होती है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी सुनना माना सुन करके खुश होना, ज्ञान के राजों को हमने समझ लिया, सुन लिया, अच्छा लगा हमको, लेकिन क्या हमने उसे व्यवहार में लाया, उसे प्रैक्टिकल में लाया, अपना जीवन बनाया? और बनाया तो कितना बनाया? और टीचर हमें होमवर्क भी देता है, जो टीचर होता है हमेशा होमवर्क भी देता है, बाबा भी हमें होमवर्क देते हैं, समय प्रति समय बाबा से होमवर्क मिलता है। तो मानो बाबा की शिक्षा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, एक मिसाल के तौर पर। तो क्या सचमुच हमारा जीवन ऐसा बन गया कि हम इतने अंतर्मुखी हैं कि हम जितना आवश्यक है उतना ही बोलते हैं, उससे अधिक हम अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देते? हमारी वाणी धीरे बोलो मतलब गुस्से में आकर कहीं हम चिल्लाते तो नहीं हैं, मीठा बोलो वो भी तभी संभव है कि जब हम किसी कारण से क्रोध में नहीं आते हैं, या सत्य बोलो वाली बात। जैसे युधिष्ठिर का एग्जाम्पल है कि जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, तब शुरू प्रारंभिक समय था उनकी शिक्षा का, तो उन्होंने बहुत एक सहज पाठ उनको दिया। छोटे बच्चे थे दोनों ही कौरव पांडव, तो कहा कि बच्चों पाठ याद करके आना, कल क्रोध मत कर। आसान है। दूसरे दिन सबसे पूछा, पाठ याद करके आए, तो सभी ने कहा जी गुरु जी, सुना दिया सबने, क्रोध मत कर। युधिष्ठिर चुप रहे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर तुम नहीं कहते हो, सबने कहा? तो युधिष्ठिर ने कहा गुरु जी मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल याद करके आना। फिर दूसरे दिन आते ही गुरु जी ने पूछा, युधिष्ठिर पाठ याद हो गया? तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं गुरु जी नहीं याद हुआ। तो अब गुरु ने थोड़ा सा गुस्सा किया, इतना सहज पाठ युधिष्ठिर तुम याद नहीं कर सकते हो, दो दिन हो गए तुमको, कल जरूर याद करके आना, अगर कल याद करके नहीं आए तो कक्षा में तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा, कक्षा के बाहर खड़े रहना होगा। कहा जी गुरु जी। क्योंकि युधिष्ठिर क्या सोच रहा था कि दुर्योधन ने मुझे ऐसा कहा तभी भी मुझे थोड़ा तो गुस्सा आया, इसका मतलब मुझे अभी पाठ याद नहीं हुआ। अब अगले दिन फिर गुरु ने पूछा, युधिष्ठिर पाठ याद हुआ? तो कहा नहीं गुरु जी। अब गुरु जी को इतना गुस्सा आया, गुरु द्रोणाचार्य को, पाठ क्या है क्रोध मत कर, और क्रोध कौन कर रहा है? अब गुरु ही कर रहे हैं, और गुस्से में आके उन्होंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। तब युधिष्ठिर ने महसूस किया कि अब मुझे याद हो गया, क्योंकि गुरु जी ने मेरे पर गुस्सा किया तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुई, इसका मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे याद हुआ। तो कहा गुरु जी अब पाठ याद हो गया? तो गुरु ने कहा सजा खाने के बाद याद हुआ? तो कहा नहीं गुरु जी, मैं अपने आप को देख रहा था कि क्या जब मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तभी भी मुझे गुस्सा तो नहीं आता है, अब आपने जब मुझे गुस्सा करके कहा और बाहर कर दिया तभी भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो अब मैं कह सकता हूं कि मुझे ये पाठ याद हो गया। तो ये है व्यवहारिकता। क्या हम अपने जीवन में, आप जैसे बाबा ने कई बार हमसे कहा, बच्चे क्रोध के अक के फूल को मेरे ऊपर चढ़ा दो। एक बार बाबा ने ये होमवर्क भी दिया था, मुझे याद है ओम शांति भवन में जब बाबा की मुरली चलती थी तो बाबा ने 6 महीने का टाइम दिया था कि बच्चे 6 महीने के अंदर अंदर क्रोध मुक्त हो जाना है सभी को, क्योंकि क्रोध भी अपवित्रता का अंश है, क्रोध बहुतों को दुख देता है, तो इसको मेरे ऊपर चढ़ा दो। फिर बाबा ने कहा जो ऐसा कर पाएगा उसे बाबा इनाम भी देंगे, ये भी बाबा ने कहा था। और बाबा ने 6 महीने के बाद फिर सबको सभा में उठाया भी था जब बाबा आए थे दोबारा। हाँ, तो आप तो उस समय नहीं थे, आप तो सब 2 से 12 साल वाले ग्रुप में हैं, शांतिवन वाले ग्रुप में हैं, जब बाबा डायमंड हॉल में आना शुरू हुए। तो अभी हम आपसे पूछते हैं, आप में से कौन समझते हैं कि हमने अपने गुस्से को जीत लिया है। कोई कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, हमको गुस्सा नहीं आता है। कोई मेरी बात नहीं मानता, कोई गलती करता है, कोई मेरा अपमान कर देता है, कोई मेरी ग्लानी करता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या जो भी, हाँ जो ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाएं। बहुत कम, हाँ 8-10 भाई बहनों के हाथ उठ रहे हैं, और आए कितने हैं, 6,000। क्या कहेंगे, कैसी रिजल्ट है। तो ज्ञान जो बाबा हमें रोज देते हैं वो हमारे स्वरूप में आए, वो हम कहेंगे कि हम टीचर को अपना अच्छे स्टूडेंट होने का प्रमाण देते हैं। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा हमारा शिक्षक के साथ साथ सतगुरु भी हैं, और सतगुरु से लोग आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम वरदान कहते हैं। तो आशीर्वाद क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, कि हमारे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाएं। गुरु मेरे सिर पर हाथ रख दे और मेरे सब काम अपने आप हो जाएं, ऐसा ही कोशिश करते हैं ना गुरु। क्यों करते हैं लोग दुनिया में, आप लोगों ने भी ज्ञान में आने से पहले कईयों ने गुरु किए होंगे, तो वो गुरु हमारे जीवन के मार्ग को सहज बना दे, ये हम उससे आशा रखते हैं। बाबा ने हमारे जीवन को कितना सहज बना दिया, अगर हम बाबा को, बाबा के दिए हुए वरदानों को याद रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, जो भी बाबा हमें वरदान देते हैं, बाबा हमें आशीर्वाद वो गुरुओं जैसे नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं वो आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है, जिस घड़ी आपका जन्म हुआ उस घड़ी ही आप बाबा के वरदानों के अधिकारी बन गए, आप उसके वारिस बन गए। लेकिन जितना आप उसे यूज करेंगे, जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना उन्हें स्मृति में रखेंगे, उतना वो वरदान आपके जीवन में स्वतः ही काम करेंगे। अब दुनिया में क्या मांगते हैं, आशीर्वाद, लंबी आयु हो जाए, हम सुखी रहें, सुखी भाव का वरदान, या किसी को बेटा नहीं है तो पुत्रवान भव, ये वरदान मिल जाए, निरोगी भव, कोई रोगी है तो निरोग हो जाए, ऐसे ही मांगते हैं। तो बाबा कहता है ये भी वरदान मैंने दिए हैं, इस जन्म में नहीं, आने वाले 21 जन्मों तक तो वो चलने वाले हैं। तो यहाँ लंबी आयु भाव का वरदान क्या है, वो शरीर की आयु से बाबा का मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ लंबी आयु का अर्थ है कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन की आयु, जब तक ये संगम युग चलता है तब तक इस ब्राह्मण जीवन में हम जीते रहें। यानी कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, सुनावंती, और फिर वो नहीं, उसको छोटी आयु कहेंगे। अगर ऐसा कोई हो जाता है तो ब्राह्मण जीवन की आयु लंबी हो, फिर निरोगी हो। केवल आयु लंबी होने से सुख नहीं होता है, लेकिन लंबी आयु के साथ साथ निरोगी भी होना जरूरी है, नहीं तो जीवन दुखमय होगा। तो ये ब्राह्मण जीवन में निरोगी रहे, यानी जो माया के रोग लग जाते हैं ब्राह्मण जीवन में, माया आ जाती है, उस माया के विघ्नों से भी बचे रहें। बुद्धि में उलझने या दिल शिकस्त हो जाएं किसी बात को लेकर के, या मूंझते रहें, बाबा कहता है इससे भी मुक्त रहें, वो बाबा हमें कहते हैं। फिर पुत्रवान भव, तो दुनिया में तो बच्चे होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जो बच्चे हैं उनकी पालना करो, लेकिन नई रचना नहीं रचनी है। पर यहाँ बाबा कहता है ये पूरी सृष्टि ही, जैसे बाबा रचयिता है, सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, आप मास्टर रचयिता हो। ये पूरे विश्व की आत्माएं इनकी बाबा के समान आप पालना करने वाले हो। तो बेहद के मास्टर रचयिता बाबा हमें बना देता है। तो हद के एक दो बच्चों की बात नहीं, कितने बच्चे हो जाते हैं, अनगिनत, बेहद माना जिसकी कोई गिनती नहीं। और उन सब आत्माओं की पालना करना माना उनके प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, कोई भी इस संसार की जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है उससे हमारा सहयोग चाहिए, हमारा स्नेह चाहिए, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है और हम ऐसा समझकर उन आत्माओं के लिए वो सब करते हैं। तो बेहद की रचना की पालना करने वाले, तो कभी ऐसा फील ही नहीं होगा मानो किसी को बच्चे नहीं होते दुनिया में, तो बहुत दुखी रहते हैं हाँ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, क्या क्या उपाय करते रहते हैं। उसी के कारण बहुत गुरुओं के पास जाते हैं, तीर्थों के पास, तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन बाबा के बनने के बाद पूरी दुनिया ही अपनी हो गई हाँ, ऐसा कहेंगे। और ऐसे ही बाबा हमें सदा सुखी भाव का वरदान देते हैं। फिर गुरु मंत्र देते हैं, कोई ना कोई मंत्र देते हैं गुरु की, ये मंत्र, ये नाम आप जपो। हालांकि वो कठिन कठिन संस्कृत के मंत्र होते हैं, कई बार उन मंत्रों के अर्थ भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरु में भाव होता है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है। तो जो गुरु ने कहा उसे बहुत निश्चय से भावना से करते हैं। जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, सुनते हैं ना, 12 गुरु किए और बाबा की अपने गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा भावना और विश्वास था कि अगर गुरु ने आधी रात को भी बुलाया तो बाबा ये नहीं सोचेगा कि अभी आधी रात है मैं सुबह तक इंतजार कर लूं, सुबह जा सकता हूं, नहीं, आधी रात माना उस घड़ी ही बाबा जाएंगे। एक हम हिस्ट्री में सुनते हैं कि बाबा के पोते का जन्मदिन था और उसके जन्मदिन की पार्टी रखी गई, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे और उसी समय गुरु का तार आ गया। तो गुरु ने बुलाया था कोई जरूरी काम से, तो बाबा ने अपनी पत्नी यशोदा को कहा कि गुरु ने बुलाया है और मैं निकल रहा हूं। तो यशोदा माता ने कहा आप कैसे जा सकते हैं, आपने ही ये पार्टी रखी है और इतने मेहमान घर में आने वाले हैं, आपके कारण ही आने वाले हैं, तो आपको रहना जरूरी है। तो उसने कहा कि ये सब तुम संभालो, अभी गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है और मैं अभी जाऊं। और वो गए और पता चला कि वहां जो काम था वो कोई इतना जरूरी नहीं था कि बाबा को तुरंत आने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी बाबा ने उसको टाला नहीं। तो क्यों ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के माध्यम बने, ऐसे अनेक गुण और विशेषताएं बाबा के अंदर थी जो बाबा ने उन्हें अपना माध्यम बनाया। तो गुरु के प्रति ऐसा श्रद्धा और विश्वास, गुरु के प्रति कहते हैं फरमानदार, शिष्य को कैसा होना चाहिए, फरमान बरदार होना चाहिए। गुरु ने जो फरमान दिया उसको उसी रीति पालन करना, उसमें जरा भी प्रश्न नहीं ऐसा क्यों, ये क्या। तो क्या बाबा के कहे हुए पर कभी हमें कोई प्रश्न उठता है, अगर हम उस संबंध से उसको मानते हैं तो बाबा के पूरे फरमान बरदार हम होंगे गुरु के संबंध से। और फिर वो तो कहते हैं मंत्र देकर के किसी को मंत्र नहीं बताना, ये आपका पर्सनल मंत्र है, कहते ना नाम आपको मिला है किसी को नहीं कहना। हाँ, किसने पहले गुरु किए यहाँ आने से पहले, वो हाथ उठाएं, देखो कितने सब हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो सभी को मंत्र मिले होंगे, गुरु से कोई ना कोई नाम मिला होगा, लेकिन यहाँ बाबा ने कौन सा मंत्र दिया, मन मना भव और मध्याची भव, मन को मेरे में लगाओ। इतना सहज मंत्र बाबा को याद करना कितना सहज है, इसलिए सहज राजयोग है हमारा, बस एक संकल्प की दूरी पर है, बाबा के प्रति संकल्प किया और वो याद हमारी हो जाती है। कोई संस्कृत के कठिन कठिन मंत्रों का जाप नहीं। और बाबा कहता है सबको कहो कि क्या मंत्र भगवान ने हमें दिया है कि मन को मेरे में लगाएंगे, मेरी शरण में आएंगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो भगवान हमें नहीं कहता अपना मंत्र अपने तक रखो, क्या कहता है सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट करके बता दो कि बाबा ने हमें क्या मंत्र दिया है। तो वो गुरु का संबंध, जो गुरुओं का भी गुरु है बाबा, वो हम अनुभव करते हैं। और बाबा हमारे लिए साजन भी है। साजन और सजनी का संबंध कैसा होता है? वफादारी का संबंध होता है। वफादारी का संबंध माना पसंद नहीं आता है अगर पति का पत्नी के अलावा किसी और के साथ भी संबंध है, या पत्नी का पति के अलावा किसी और के साथ भी संबंध है, तो संबंधों में क्या होने लगता है फिर? अगर ऐसा कोई सांसारिक संबंधों में भी देखते हैं पति पत्नी के संबंध में, तो वो संबंध टूटने लगता है, संबंधों में दूरी बढ़ने लगती है। बहुत सारे तलाक के केसेस का कारण यही होता है दुनिया में। शिव बाबा को भी इस संबंध में वफादारी ही पसंद है। वफादारी माना एक बाप दूसरा ना कोई, बुद्धि किसी और की तरफ किसी भी देहधारी के आकर्षण में न जाए। जिसको बाबा कहता है तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही संग चलूं, तुम्ही संग प्रीत निभाऊं, तो ये साजन और सजनी का संबंध है। चलो बहनों के लिए तो कह सकते हैं साजन का संबंध, भाइयों के लिए क्या कहेंगे? भाइयों के लिए क्या कहेंगे? साजन है या सजनी है, क्या कहेंगे? या सजनी है जो संबंध अनुभव करना चाहे, क्योंकि आत्मा रूप में तो सभी सजनियां हैं, आत्मा रूप में सब सीताएं हैं। बाबा कहते हैं ना सभी सीताओं का राम कौन है, आज की मुरली में भी था। तो आत्मा रूप में तो हम सब बाबा की सजनी है, चाहे अब ये शरीर रूपी जो चोला है इस समय भले ही पुरुष का है, लेकिन आत्मा समझ के बाबा को हमें याद करना है। लेकिन वफादारी बाबा के प्रति बिल्कुल एक बाप और दूसरा कोई आधार हमारे जीवन में ना हो। फिर वो हमारा दोस्त भी है। आज माता पिता से भी दोस्त प्यारे होते हैं दुनिया में। फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल चाहिए, फ्रेंड सर्कल से बहुत सपोर्ट मिलता है। जो बातें हम माँ बाप को भी नहीं कह सकते वो हम अपने दोस्तों से करते हैं। तो शिव बाबा खुदा दोस्त के रूप में हमारा साथी है। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी दोस्ती की कहानियां आती हैं, कैसे सुदामा और कृष्ण की दोस्ती थी और समय पड़ने पर कैसे श्री कृष्ण ने सुदामा को बिल्कुल अपने समान ही बना दिया जब उसको जरूरत पड़ी, वो बहुत गरीब था। ऐसे और भी कई दोस्ती के किस्से हैं जो भक्तों के साथ भगवान ने निभाए। भक्तों को भी भगवान ने उस संबंध से अनुभव कराया। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो डायरेक्ट भगवान के संबंध में हैं, तो भगवान भी हम जब वो साथी बना करके हम उसको अपने साथ रखते हैं, वो दोस्त तो हमेशा हमारे साथ नहीं हो सकते लेकिन भगवान ऐसा दोस्त है जो हम जब चाहें, जिस समय चाहें, जहां चाहें, जितना समय चाहें हमारा साथी हो सकता है। और हर कर्म में हम उसको साथी बना लें, हर कर्म में साथी है तो वो कर्म हमारा और सहज कर देगा, क्योंकि कर्म में उसकी शक्ति आ जाएगी, ईश्वरीय शक्ति जुड़ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी आप कर्म करते हो तो करण करावनहार, साथी को अपने साथ रखो, वो साथी मेरे कर्म में सहयोगी है। मेरे कार्य में वो हाथ बटा रहा है, तो वो हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमारा बच्चा भी है, परमात्मा हमारा बच्चा भी है। आप तो सब प्रवृत्ति वाले हैं और सबने बाबा को अपना वारिस बनाया है, क्या कहेंगे? वारिस बनाया है तो फिर अगर दो बच्चे हैं तो तीसरा कौन सा है? बाबा है। तो जो हम दो बच्चों के लिए करते हैं उसमें एक तीसरा भी ऐड हो गया, उतना ही किसके लिए भी करना है? बाबा के लिए। तभी हम कहेंगे कि उस संबंध को हम निभा रहे हैं। संबंध है माना, फिर उसको हमें निभाना है, प्रैक्टिकल में हम उसे निभाएं। अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी का हिस्सा देते हैं तो क्या हमने बाबा को अपने उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाया है? और वो तो वो हमारी प्रॉपर्टी को लेने वाला नहीं है, पदम गुणा करके और ही हमें रिटर्न करने वाला है। कई बार मूल्यों में बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा को अपना वारिस बनाते हैं फिर बाबा उन्हें 21 जन्मों के लिए वारिस बना देते हैं। आने वाले समय में हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, माताएं हैं, तो बाबा को भी क्या करना है? बाबा को भी क्या करना है? वो भी बच्चा है ना, तो रोज भोग लगाना है। भगवान को खिलाए बिना हमें भोजन नहीं खाना है, तो उसको स्वीकार, उसको भी हम स्वीकार करें। जैसे अपने पूरे परिवार को हम खिलाते हैं और बच्चों का तो विशेष ध्यान रखते हैं, तो बाबा मेरा बच्चा है तो उसका भी मुझे ध्यान रखना है कि उसे किस तरह का भोजन पसंद है, क्या मुझे बाबा को भोग लगाना है। रोज उसके हिसाब से, उस भाव से अगर हम बनाएंगे तो वो हम फील भी करेंगे उस संबंध में। फिर एक संबंध जो है धर्मराज का, जिसे हम कहेंगे कि वो न्याय वाला संबंध है। बाबा हमारे लिए धर्मराज भी बनता है, लेकिन पूरे संगम युग में वो धर्मराज नहीं बनता। पूरे संगम युग में तो बाप, टीचर, गुरु के रूप में बाबा हमारी विशेष पालना करते हैं। फिर उसके अलावा जो एक संबंध हमें बहुत पसंद है वो हम बाबा से अनुभव करेंगे, तो फिर एक में ही हम सर्व का भी अनुभव कर लेंगे। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाबा हमारा पिता भी है और बाबा हमारा साजन भी है, कैसे हो सकता है? एक में ही वो पिता भी है और एक में ही वो साजन या सजनी, जो भी हम संबंध का अनुभव करना चाहें। तो बाबा कई बार कहते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है तो माता पिता गुरु शिक्षक तो वो है ही, वो तो रोज पालना मिलती है हमें, लेकिन एक जो अन्य संबंधों में बहुत प्यारा हमें लगता है, चाहे वो दोस्त प्यारा लगता है, चाहे वो साजन का संबंध प्यारा लगता है। कई लोगों को आशिक माशूक का संबंध पसंद होता है, क्योंकि शिव बाबा हमारा प्यारा माशूक भी है। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? बाबा के आशिक बच्चे है ना, तो जिसको बिलवेट कहते हैं दुनिया में, और जो जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, इस स्थान पर जाएं, आजकल लोग उसको डेटिंग कहते हैं, डेट पर जाना कहते हैं ना? तो बाबा के साथ भी हम घूम सकते नहीं घूम सकते, तो वो संबंध का अनुभव भी हम बाबा के साथ, अगर हमें वो अच्छा लगता है, जो संबंध का हम अनुभव करना चाहें। बाबा कहता है जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, और वो घूमने फिरने हम यहाँ मधुबन में भी आ सकते हैं, आप अपने घर बैठे होंगे। बाबा कई बार कहता है कि लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? सागर के किनारे जाते हैं या बगीचों में जाते हैं, कौन से स्थान चुनते हैं, या रेस्टोरेंट वगैरह बहुत अच्छे 5-स्टार होटल चुनते हैं, वहां बैठ करके खाना पीना करते हैं। तो ये तो सागर का किनारा है, मधुबन क्या है? ब्राह्मणों के लिए बीच कौन सा है? वो सागर तू सागर के किनारे की बात नहीं, हमारा सागर का किनारा कौन सा है? ज्ञान सागर कहाँ आता है? तो मन से मधुबन में आ जाओ, बाबा के साथ घूमो, बाबा के चारों धाम, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, और बहुत प्रेम से बाबा से वो मिलन की रू रिहान का अनुभव हम कर सकते हैं। और उस समय जो अव्यक्त बाप दादा के मिलन के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को भी हम याद कर सकते हैं। वो अनुभव भी हमें समीप संबंध की अनुभूति कराते हैं कि कैसे बाबा से हमने मिलन बनाया। दुनिया में अगर कोई संबंध मिसिंग होता है ना, मतलब माँ नहीं है, किसी को बाप नहीं है, किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है या किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, कोई ना कोई संबंध ऐसा होता है कि जिसकी कमी होती है किसी के जीवन में, तो उसे फील करते हैं कि देखो मेरा भाई नहीं है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार था, बाबा तो हमारा भाई भी है। जैसा अवसर होता है वो संबंध हम बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। रक्षाबंधन के समय हम सब ने बाबा से राखी बंधवा ली, हाँ तो भाई भी हो गया ना बाबा हमारा, हाँ या हमने बांध दी बाबा से, हमने बंधवा भी ली। तो कहने का भाव क्या है कि वो कोई भी कमी हमें फील नहीं होती। ऐसे बहुत ब्राह्मण हैं, जब वो ज्ञान में आए तो उनके कोई ना कोई संबंध कम थे, जैसे कोई माता है उनका पति नहीं है, मानो बाबा तो पतियों का पति है, बाबा के साथ उस संबंध का अनुभव किया और उसके बाद कभी फील ही नहीं किया कि मुझे पति नहीं है, बाबा इतना अच्छा सुंदर अनुभव कराता है, या और भी जो भी कोई संबंध है, तो ऑल इन वन है बाबा, सर्व संबंध एक में समाये हुए हैं। दुनिया में तो हर संबंध अलग अलग होता है ना, तो इसीलिए कहते हैं हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, थोड़ा टुकड़ा एक दिल में, थोड़ा एक संबंध में, थोड़ा टुकड़ा दूसरे संबंध में, फिर तीसरे संबंध में। लेकिन बाबा के साथ जब हम बाबा को याद करते हैं तो फिर सर्व संबंध एक में आ जाते हैं और हम पूरी एकाग्रता का अनुभव उस एक में करते हुए उसके लव में लीन हो जाते हैं, उसकी लगन में हम मगन हो जाते हैं। और फिर वो महसूसता हमें आती है कि जैसे बाबा ने हमें भरपूर कर दिया और जो हमने पाना था वो पा लिया। तो निरंतर योगी अगर हम बनना चाहते हैं, जैसे बाबा हमें कई बार कहते हैं 8 घंटा हम याद करें, या हमारी याद कम से कम 4 घंटा तो होनी चाहिए, चलो 8 घंटा अगर हमें ज्यादा लगता है तो इतना तो हम करें। तो अपनी याद के 4 को हम संबंधों की अनुभूति से बढ़ा सकते हैं। जिस समय जो संबंध है उस समय अनुभव करें, अमृत वेले माता पिता की पालना लें, मूल्य के समय हम शिक्षक के संबंध से, जब हम सारे दिन ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो जब मूल्य को हम रिवाइज कर रहे हैं या ज्ञान को अपनी बुद्धि में ला रहे हैं, अभी संडे की मूल्य कितनी अच्छी थी, स्वचिंतन, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा केवल साजों को सुनना नहीं है लेकिन उसके राज में भी जाना है। तो जो स्टूडेंट पढ़ाई को याद करता है वो टीचर को भी याद करता है, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन। इसीलिए कहा मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और वो हमने दादियों में देखा, बड़ी दादी को हमने देखा, दादी प्रकाशमणि जी को 4 बार दादी मुरली पढ़ती थी रात को सोने से पहले, तो था ही था, कभी भी बिना मुरली पढ़े दादी जी नहीं सोए। कई बार बाबा के प्रोग्राम में हम देखते थे 12 बज जाते थे और इतनी देर से दादी कमरे में आए, तो हमें वो सौभाग्य मिला दादी के अंग संग उनके साथ सेवा करने का। तो हम ही कई बार कहते थे, जैसे साथ में मुनि दीदी वगैरह भी, कि दादी बहुत देर हो गई है, आप अमृत वेले तो मुरली पढ़ते ही हैं, अभी सो जाइए। तो दादी कहती थी मैं मुरली नहीं पढ़ूंगी तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, और दादी को 1 घंटा लगे चाहे, बाबा जो मुरली चलाकर गया है वो मुरली पूरी पढ़ेंगे, उस समय 4-4 पेज की मुरली होती थी, पूरी मुरली पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 1 मिनट में सो जाएंगे, फिर सोने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता था, 1 मिनट में दादी फिर सो जाती थी, और फिर अमृत वेले पढ़ती थी, फिर मुरली क्लास में पढ़ती थी, फिर शाम को जब रेस्ट करके दादी उठती थी तो भी मुरली पढ़ती थी। और इसीलिए हम देखते थे कि दादी बाबा की शिक्षाओं का पूरा स्वरूप, बाप समान थे, क्योंकि याद है स्मृति में है कि बाबा ने क्या कहा। हम कितना याद रखते हैं मुरली को, कितना याद रखते हैं, आज मुरली सुनी, बहुत अच्छे पॉइंट्स बाबा ने कहे, ये बात कितनी अच्छी कही बाबा ने, लेकिन शाम तक कितनी याद है, कितनी याद रहती है। अगर हमने मुरली का मनन नहीं किया तो शाम तक एक पॉइंट भी हमें याद नहीं आती, तो हमारे कौन से संस्कार शुरू हो जाते हैं फिर। मुरली का जो सुबह मुरली सुनी उसका असर 2-3 घंटे अच्छा रहता है, बैटरी चार्ज रहती है, धीरे धीरे हम कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, हमारी एनर्जी यूज होने लगती है, फिर वो बैटरी डिस्चार्ज होती है और हम फिर से विस्मृति में आते हुए देह अभिमान में आ जाते हैं, कर्म कॉन्शियस होते हैं, फिर हमारा वही पुराने संस्कार इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, सब धारणा भी है, क्यों गुस्सा आ रहा है मेरे को, क्यों चिड़चिड़ापन आ रहा है, नाराजगी हो जाती है छोटी छोटी बातों में, मन उदास हो जाता है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्योंकि जो ज्ञान का हमें स्मरण करना चाहिए वो स्मरण हम बार बार नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, जितना हम बाबा के ज्ञान को स्मरण करते हैं, बुद्धि पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से स्वतः ही किनारे हो जाती है, क्योंकि हमें दुखी क्या बनाता है, पर दर्शन पर चिंतन ही हमें ज्यादा दुखी बनाता है। जैसे ही मन फ्री होगा कहाँ चला जाएगा, इसकी उसकी बातों में, इसने किया ऐसे किया वैसे किया क्यों किया, ज्ञान एक तरफ बुद्धि कहाँ जा रही है। लेकिन अगर हम अटेंशन दे करके अपनी बुद्धि को ज्ञान की बातों में, जो बाबा ने कहा, भले हम उसके पॉइंट्स नोट करें, आजकल तो हमारे पास बहुत साधन है, कोई कमी नहीं है, हम टीवी में देख सकते हैं, हम मोबाइल से मुरली पढ़ सकते हैं, प्रिंट होकर के भी मुरली मिलना कोई मुश्किल नहीं है, जो भी साधन हमें अपनाना पड़े, जैसे कहा रेगुलर पंचुअल तो रहना ही है, रोज मुरली सुननी है, मुरली मिस नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ बार बार भी उसे स्मृति में लाना है। जैसे हमने दादियों को देखा, जानकी दादी सुनाते हैं कि थोड़ा वो देरी से आए ओम मंडली में, 1 साल पीछे आए, तो बाबा तो कहता था विनाश हो जाएगा, तभी भी नहीं पता था कि कब हो जाएगा, तो सोचते थे कि अगली दिवाली भी नहीं आएगी, तो सोचते थे कि तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो बाबा से पूछा, बाबा मैं तो थोड़ा लेट आई हूं तो मैं कैसे गैलअप कर सकती हूँ। दादी जानकी ने बाबा से पूछा, उस समय भी उनको लगता था मैं लेट आई हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे हम लेट आए हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची रोज 12 बार मुरली पढ़ो, नहीं बाबा ने 6 बार कहा, बाबा ने कहा बच्ची रोज 6 बार मुरली पढ़ो, तो दादी ने कहा बाबा आप 6 बार कहते हैं, मैं 12 बार पढ़ूंगी। और दादी कहती मैंने बराबर मुरली 12 बार पढ़ी, कई बार मैं रात रात को जाग करके मुरली पढ़ती थी। तो हम चलो हम 12 बार तो नहीं पढ़ेंगे, 4 बार भी बड़ी दादी की तरह 4 बार भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम 2 बार तो पढ़ सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं जो रॉयल लोग होते हैं ना 2 बार स्नान करते हैं, तो हमें भी ज्ञान स्नान कम से कम 2 बार तो जरूर करना है। जो सुबह हमने सुनी शाम तक डिस्चार्ज हो जाती है, शाम को फिर से हम उसे रिवाइज करें, बाबा ने क्या कहा, फिर से हम वो विस्मृति से स्मृति में आ जाएंगे। तो जितना बाबा की पढ़ाई याद है उतना ही बाबा याद है, उस संबंध से बाबा हमें याद आता है। तो बाबा को हम समय अनुसार जो संबंध जब हमें अच्छा लगता है उस संबंध से उसे अपना साथी बनाएं, और इस तरह से हम, बाबा कहता है माया जीत बन सकते हैं, सहज माया जीत बन सकते हैं, सहज निरंतर योगी बन सकते हैं, सहज बाबा से लव में लीन स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उसकी मोहब्बत में समाये रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। कई बार बाबा कहते हैं अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो क्या करो, कोई ना कोई संबंध से बाप की मोहब्बत में समाये रहो, जहां प्रेम होता है वहां मेहनत नहीं होती है। तो ठीक है, अभी हम इसी स्मृति से बाबा को सर्व संबंधों से अपना साथी बनाते हुए बाबा की याद में बैठेंगे। सीधे होकर बैठें सभी। अपने मन को न्यारा कर लें। अपने आसपास के वातावरण से, व्यक्तियों से और स्वयं को महसूस करें कि मैं आत्मा इस देह की दुनिया से पार उड़ती हुई अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अव्यक्त वतन जा रही हूँ। और स्वयं को अब मैं प्यारे मीठे बाप दादा के सम्मुख अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा बाहें पसारे मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे मीठे प्यारे बच्चे, आओ। बाबा के नेत्रों से बहुत स्नेह मुझ आत्मा के प्रति बरस रहा है और मैं बाबा के उस स्नेह में समाती जा रही हूँ। ईश्वरीय प्यार पवित्र और निर्मल प्यार मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। बाबा आप ही मेरे सच्चे मात पिता हो। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। संगम युग पर आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है। आप मुझे अपना प्यार और पालना दे करके अपनी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बना रहे हैं। बाबा के वर्षे की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी शिक्षक के रूप में। आपने मुझे तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। कितना ऊंच लक्ष्य और इतनी ऊंच पढ़ाई। और स्वयं बाप दादा मेरे शिक्षक हैं। कितना ना मैं अपने भाग्य की सराहना करूं, कितना नशा है मुझे, बेहद की खुशी बाबा के ज्ञान के राजों को जानकर मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। जैसे गोप गोपियों का गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा की मुरली, मुझे उस आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति का अनुभव कराती है। बाबा ने मुझे ऊंच और महान बना दिया है, श्रेष्ठ जीवन बनाया है। मैं ही देवात्मा बनने वाली हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। श्री बाबा मेरे सतगुरु भी हैं। गुरु रूप में मेरे लिए भाग्य के भंडारे स्वयं भाग्य विधाता ने खोले हैं। मैं जितना लेना चाहूं बाबा का, प्राप्तियों का खजाना अखुट है। शिव बाबा मेरे साथी हैं, मेरे हर कर्म में करण करावन हार है। मेरे एक बार प्यार से बाबा को दिल से याद करने से मेरा बाबा कहने से बाबा मेरे लिए हाजिर हो जाते हैं कहीं भी कभी भी सदा मेरे रक्षक हैं महसूस करें बाबा के इस ईश्वरीय रूहानी प्यार को बाबा के संग में मैं आत्मा हूँ अति समीप हूँ बाबा के स्नेह में समाई हुई उसके लव में लीन जैसे बाबा और मैं कंबाइंड स्वरूप में हैं कुछ समय इसी लगन में मगन रहें बाबा के असीम स्नेह को मैं अपने दिल में अनुभव कर रही हूँ बाबा आप ही मेरा संसार है सब सुख सब प्राप्तियां मुझ आत्मा को आपसे अनुभव हो रही हैं आपको पाकर मेरा दिल गाता है पाना था सो पा लिया मुझे जन्म जन्मांतर की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी आपने बना दिया है। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। महसूस करें मैं विश्व के ग्लोब पर बाबा के साथ हूँ। समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा के साथ ईश्वरीय स्नेह के के वाइब्रेशन पहुंचा रही हूं। संसार की सभी आत्माएं अपने पिता को पहचाने और उनसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार लेने के योग्य बने। ऐसी मेरी सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना है।